वाली गाड़ी चलना तो दूर लुढ़क पुढ़क और जाएगी। करवे बोले, मेरे भाई, जब असमान पहियों वाली काठ की गाड़ी ठीक यात्रा नहीं कर सकती, दलित स्त्रियों वाले परिवार ही किस तरह उन्नति कर पाएंगे। वह व्यक्ति करवे का मुंह ताकता रह गया। टू आत्महत्या के कारणों की शोध करने वाले नाडरमन का कहना था कि अधिकांश हत्याएं निजी कारणों से होती हैं, फाबेरो का मत था पारिवारिक कारणों से। खोज की गई तो पाया गया कि फाबेरो की बात सच थी, आत्महत्या करने वाले अधिकांश पारिवारिक जीवन से ऊब पाए गए और उसका कारण स्त्रियों की अशिक्षा थी या उनकी रूढ़िवादिता। थ्री आनंद स्वामी पंजाब के एक गांव में लोगों को स्त्री शिक्षा के लाभ समझा रहे थे।
एक बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, शास्त्र की आज्ञा है, स्त्री को घर से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वह दूषित हो जाती है।
आनंद स्वामी ने पूछा, अच्छा यह बताओ, पानी तालाब का अच्छा होता है या नदी का?
बूढ़ा बोला, महाराज, घिरा रहने के कारण तालाब का पानी गंदा हो जाता है, पर नदी का जल चलता रहता है इसलिए स्वच्छ रहता है। आनंद स्वामी बोले, अब बताओ, जो स्त्री घर में कैद रहेगी वह अच्छी होगी या जो सामाजिक जीवन में भाग लेने वाली होगी वह?
बुड्ढे को कोई उत्तर देते नहीं बना। फोर आज का सबसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, एक सज्जन ने महर्षि दयानंद से पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, नारी जब तक इस देश की स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक यह समाज समर्थ नहीं बनेगा। वह सज्जन बड़े प्रभावित हुए। सासनी का कन्या गुरुकुल इन्हीं के परिश्रम का फल था, जिसमें आज सारे उत्तरी भारत से कन्याएं पढ़ने जाती हैं।
पांच एक व्यक्ति अपनी कन्या से प्यार करता था पर उसे पढ़ाता नहीं था। लड़की ने बहुत कहा पर वह आदमी यही कहता रहा, बेटी मेरे पास बहुत धन है, बड़े घर में विवाह कर दूंगा, सो मौज करना। विवाह किया भी बड़े घर में अनपढ़ होने और ऊंचे कायदे न जानने के कारण बेचारी को गोबर थोपने का काम मिला। उसने कहा, निरर्थक है पिता का ऐसा प्यार जो अपनी कन्या को पढ़ा तक नहीं सकता।
सिक्स अवंतिका बाई गोखले के विवाह की बात आई तो पिता ने पूछा, बेटी बोल, तुझे कैसा पति चाहिए? अवंतिका ने उत्तर दिया,
भले ही हम निर्धन रहें पर पति ऐसा हो जिसके साथ रहकर हम अपने देश की पिछड़ी बहनों के उत्थान का काम बराबर कर सकें।
सेवन एक स्त्री के चार लड़के थे।
तीन लड़कों की बहुएं आईं पर वे सभी अनपढ़ थीं, इसलिए जब भी सास लड़ती वे उससे भी अधिक तेज हो जाती, बस घर अखाड़ा बन जाता। चौथे पुत्र की बहू आई, शिक्षित, वह झगड़े को नहीं झगड़े के कारण को ढूंढती और उसे दूर करती,
फलस्वरूप उससे सास की मित्रता हो गई।
अब तो दूसरी बहुओं ने भी भूल समझी, ये भी घर में रहकर पढ़ने लगी।
एक समझदार स्त्री ने घर को स्वर्ग बना दिया। 70 ऊंच नीच की मान्यता अन्यायमूलक है। प्रश्न
एक, सिद्ध कीजिए कि मनुष्य मात्र की जाति एक है। दो, प्राचीन काल में समाज को कितने वर्ग में बांटा गया था व क्यों?
थ्री, ऊंच नीच का आधार गुण होना चाहिए या वंश, क्यों?
चार, क्या पूर्वजों के कारनामों के कारण उनके वंशजों को ऊंच या नीच माना जाना चाहिए,
कारण सहित बताओ।
पांच, आज भारतीय समाज की विचित्र दशा क्यों है, क्या प्राचीन काल में जाति भेद था? छह, वर्णभेद की संकीर्ण नीति से देश का क्या हित हुआ है? सात, हिंदू समाज की संख्या निरंतर कम होने का क्या कारण है? आठ, हिंदू समाज संकीर्ण, अनुदार एवं अन्याय क्यों कहा जाता है? नौ, ऊंच नीच के मामलों में हमारा कर्तव्य क्या है?
कथाएं। वन, किसी ने विनोबा जी से पूछा, आप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, कोकणस्थ या देशस्य?
उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं स्वस्थ हूँ जो कि किसी एक धर्म जाति और देश से संबंध नहीं रखता।
वे सज्जन अपनी जाति पाति मूलक संकीर्णता पर बहुत लज्जित हुए।
दो, पेशवा की सेना की और धुआं उड़ता देखकर तैमूर लंग ने पूछा, यह क्या हो रहा है? खुफिया अफसरों ने बताया, हिंदू एक दूसरे का छुआ भोजन नहीं खाते, इसीलिए सब अपना अपना अलग अलग भोजन पका रहे हैं, उसी का धुआं है। तैमूर ने कहा, जो जाति इस तरह विभक्त हो उसे जीतना क्या कठिन है। उसी समय हमला बोल दिया और पेशवा की सेना जीत ली।
थ्री, पूना के सरकारी जज श्री मदनकृष्ण जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। जज साहब जरिजन थे, तथापि सम्मानित पद में होने के कारण लोग शर्मा शर्मी दाह संस्कार में सम्मिलित हो गए। देवयोग से 15 दिन पीछे जज साहब की मृत्यु की गई।
अब लोगों में डर भी न रहा, सो दाह संस्कार के लिए कोई भी नहीं गया।
यह बात न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने सुनी। वे स्वयं जज थे और उसी दिन हारे थके दौरे से आए थे, वह सब भुलाकर वे स्वयं गए और दाह संस्कार का सारा प्रबंध खुद किया, मानो वह कोई उनके घर वाले ही रहे हों। फोर, अस्पृश्यता उन्मूलन के संदर्भ में गांधी जी बीजापुर में ठहरे थे। अभी वे मध्याह्न में विश्राम के लिए लेटे ही थे कि कई ब्राह्मण अस्पृश्यता के संबंध में शास्त्रार्थ करने आधमके। गांधी जी ने सोचा, ये लोग देर तक खड़े रहेंगे, अतएव विश्राम छोड़कर पहले उन लोगों को ही बुला लिया। वे लोग अपनी बातें शास्त्रीय श्लोक आदि सुनाकर स्पृश्यता का समर्थन करने लगे। सारी बातें चुपचाप सुन चुकने के बाद गांधी जी बोले, भाइयों आपकी बातें सुन चुके, अब एक मेरी बात सुनो, वही यह कि छुआछूत हिंदू धर्म का कलंक है और मेरी इस निष्ठा को कोई काट नहीं सकता। ब्राह्मण निरुत्तर लौट गए।
पांच, हिंदुओं की ऊंच नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए के सिख गुरु अमरदास ने सामूहिक चौके का प्रचलन किया। उनके लंगर में हर वर्ण का व्यक्ति सामूहिक भोजन करता था।
एक दिन उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर उनसे मिलने गया।
द्वार रक्षक ने गुरु को सूचना दी तो उन्होंने खबर भेजी, यदि अकबर एक साधारण नागरिक की हैसियत से आना चाहते हैं तो ही आ सकते हैं, शहंशाह की दृष्टि से नहीं। अकबर उसी भाव से गया और सबके साथ लंगर में भोजन करके उनकी समतावादी नीति का समर्थन किया।
सिक्स, गांधी जी के आश्रम में दो साधु आए और गांधी जी से बोले, हमें काई सेवा कार्य दो। गांधी जी ने उन्हें रात को अतिथिशाला में विश्राम दिया। प्रातःकाल होते ही बुहारी और बाल्टी लेकर पहुंचे और बोले, यह लो आज टट्टियां आलोक साफ करें।
साधु बोले, यह क्या कहते हैं, यह तो हरिजनों का काम है।
गांधी जी बोले, हाँ, जो छोटे से छोटा काम करता हो वही सच्चा सेवक भगवान का भक्त है। साधु चुपचाप खिसक गए। उस दिन की सफाई बापू ने स्वयं की। सेवंथ, महर्षि मातंग और उनके शिष्य जिस रास्ते से प्रातःकाल स्नान के लिए सरोवर जाते वहां कांटे बिखरे होने से उन्हें बड़ा कष्ट होता। यह देखकर भीलनी शबरी ने प्रतिदिन रास्ता बुहारना प्रारंभ कर दिया।
मातंग शबरी की सेवा से बहुत प्रसन्न होकर शबरी के लिए आश्रम में ही भोजन की व्यवस्था करा दी, किंतु शबरी ने उसे अस्वीकार करने हुए कहा, मैं अनाथ हूँ, हरिजन हूँ तो क्या,
रोटी अपने परिश्रम की ही खाऊंगी, अपना स्वाभिमान नष्ट न करूंगी। महर्षि ने नाराज होकर उसे आश्रम से निकाल दिया। फिर भी शबरी ने पथ बुहारना बंद न किया। भगवान राम स्वयं ही शबरी से मिलने आए और उसके जूठे बैर खाए।
71, अश्लीलता की बाढ़ हमें पतित क्यों बना रही है?
प्रश्न।
एक, अनेक रूपों में नर और नारी के बीच का संबंध हमारे भारतवर्ष में किस तरह का माना जाता रहा है?
2, वासना की चर्चा क्या सामाजिक जीवन में करना उपयुक्त होगा?
3, वासना की चर्चा सामाजिक जीवन में करने से हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं?
4, मस्तिष्क में कामुकतापूर्ण विचार भरने से क्या हानियां होती हैं?
5, आज नारी जाति का किस प्रकार अपमान किया जा रहा है? 6, उपन्यास और चित्र तस्वीरें आज किस तरह पेश की जा रही हैं? 7, पवित्र नारी को निर्लज वेश्या के रूप में पेश करने में कौन कौन से उद्योग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं? 8, इस समय नारियों को क्या करना चाहिए पर वे क्या कर रही हैं? 9, अश्लीलता की बाढ़ से समाज को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
कथाएं।
एक, पाकिस्तान की बात है।
एक लड़की बुरके में कॉलेज से निकली, एक मनचले युवक ने उसका पीछा किया। लड़की घूमकर देखती और हंसकर फिर चल देती, महाशय ने उसका कुछ और ही अर्थ लगाया।
पीछा करते चले गए पर जब देखा कि वह लड़की तो उन्हीं के घर जा रही है तो वह चौंके। अब लड़की ने पर्दा उठाते हुए कहा, बरखुरदार चौंकते क्यों है, अंदर आइए। युवक यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वह उसकी सगी बहन है। युवक ने उस दिन से कसम खाकर लड़कियों को छेड़ना छोड़ दिया।
2, जोल छावनी की कुमारी अहिल्या रानाडे को एक गुंडा धोखे से बहका ले गया। अस्पताल के पीछे पहुंचने पर लड़की को शक हो गया। गुंडा जबरदस्ती करने लगा तो अहिल्या को याद आया कि उसके सिलाई के बक्स में ब्लेड रखा है, उसने निकालकर गुंडे की नाक काट ली। गुंडा अपना मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ। 3, एक सांप्रदायिक दंगे से पीड़ित दिल्ली की कुछ मुसलमान लड़कियां एक घर में घुस गईं।
पर यह क्या, यह तो एक सिख का घर था। कुलवंत सिंह नामक यह सिख पाकिस्तान से लूटकर आया था। लड़कियों को काटो तो खून नहीं, तब तक शरारती लोग भी वहां आ पहुंचे।
कुलवंत सिंह ने दरवाजा खोलकर उन लोगों को यह कर भगा दिया कि यहां कोई नहीं आया। उनके चले जाने पर कुलवंत ने डरी हुई लड़कियों को चाय पिलाई और टैक्सी करके उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गांधी जी इस युवक से मिलने उसके घर गए।
4, गांधी जी से कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनकी लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं तो लड़के अश्लील शब्द बकते हैं। गांधी जी ने उनसे कहा, अपनी लड़कियों से कहना कि वे कल से सिर मुड़ाकर स्कूल जाएं, फिर बताना लड़के क्या करते हैं।
अभिभावकों ने अनुभव किया, सारा दोष लड़कों का ही नहीं पश्चिम टाइप के उच्छृंखलता भड़काने वाले वेश विन्यास का भी है, सो वे लड़कियों को सादगी से रहना सिखाने लगे। 5, रानी बाजार के युवकों ने अश्लीलता विरोधी संगठन बनाया है। स्थान स्थान पर यह संगठन गुंडा तत्वों से संघर्ष करता है, फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वहां की गुंडागर्दी दूर हो गई। चरित्रवान युवकों को ऐसे संगठन हर स्थान पर बनाना चाहिए।
6, दिल्ली में एक बाप बेटे दोनों में मंचलेपन की दिलचस्प होड़ लगी। लड़का सवेरे अपने घर की दीवारों में सुरैया सुरैया लिख जाता है, उसकी दृष्टि से सुरैया सबसे अच्छी है। शाम को लौटने पर वह सुरैया के स्थान पर निम्मी निम्मी लिखा पाता है। उसके पिता निम्मी के आशिक हैं। एक दिन दोनों में हाथ पाई तक की नौबत आ गई।
72, भिक्षावृत्ति का व्यवसाय न रहने दें। प्रश्न।
एक समर्थ होते हुए भी किसी के आगे हाथ पसारने पर हमें क्या क्या हानियां हैं।
टू, भारत में भिक्षा व्यवसायियों की संख्या बतलाते हुए इनके भिक्षा मांगने की शैली को बतलाइए।
तीन, प्राचीन काल के साधुओं की स्थिति को स्पष्ट करें।
फोर, सारे साधु यदि जीविका उपार्जन के लिए भिक्षा वृत्ति के साथ साथ ही रचनात्मक कार्यक्रमों में जुट जाएं तो वे देश का भला किस प्रकार कर सकते हैं।
पांच, भिखारियों से देश और समाज को कैसे हानि है सिद्ध कीजिए।
सिक्स, विचारशील व्यक्तियों को भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। सेवन, हमारी सरकार तथा धर्म संस्थाएं भिक्षा उन्मूलन में किस प्रकार सहयोग दे सकती हैं।
आठ, यदि भिक्षा व्यवसाय खत्म कर दिया जाए तो समाज कैसे इनके बोझ से छूटेगा।
कथाएं। वन, हजरत इब्राहिम के पास एक भिखारी आया और भीख मांगने लगा।
इब्राहिम ने कहा, तुम्हारे पास जो सामान हो लाओ। भिखारी सब सामान लाया। कंबल छोड़कर इब्राहिम ने सब सामान नीलाम कर दिया और एक कुल्हाड़ी खरीदकर उसे देकर कहा, बेटा समझदारी की बात यह है कि भगवान ने दो दो भुजाएं सबको दी हैं, इसलिए अपना पेट अपने परिश्रम से भरो। भिखारी चला गया और मेहनत करने लगा।
15 दिन बाद वापस आकर उसने दिखाया, अब उसके पास 2 दिरहम बचत के थे।
दो, दया भाव दिखलाते हुए एक सज्जन ने लड़के को 5 पैसे की भीख देनी चाही। लड़के ने कहा, श्रीमान जी, मैं भीख लेने नहीं आया, मैं तो निवेदन करने आया हूँ कि अपने स्कूल में भर्ती करा दीजिए तो मैं भी पढ़ सकूँ।
बच्चे से प्रभावित सज्जन ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया। पांवों से लगड़ा यही बालक एक दिन कुशल हवाबाज सैंडर्स के नाम से विख्यात हुआ। 3, महाराज रविशंकर सवा मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की ने इनकार करते हुए कहा, मेरी माँ ने बताया है आदमी को अपने परिश्रम की कमाई खानी चाहिए।
रविशंकर के मन में ऐसी माता के दर्शनों की इच्छा हुई। वे लड़की के साथ उसके घर गए तो पता चला उसने अपनी सारी संपत्ति बालिका विद्यालय को दान दे दी है और स्वयं परिश्रम करके आजीविका चलाती है।
4, महात्मा टॉल्स्टॉय के आगे एक भिखारी गिड़गिड़ाया, 2 पैसे दो। टॉल्स्टॉय ने कहा, अपना एक हाथ काटकर मुझे दे दो, 20,000 रुपये दिलवा दूंगा, दोनों के 40,000, पांव भी दे दो तो 50,000, आंख कान और नाक दे दो तो 1,00,000 रुपये दिला सकता हूँ।
युवक ने कहा, महोदय यह कैसे हो सकता है।
टॉल्स्टॉय बोले, यह नहीं हो सकता तो 1,00,000 रुपये का शरीर लेकर भी 2 पैसे की भीख मांगते तुम्हें लाज नहीं आती। युवक ने उस दिन से भीख मांगनी छोड़ दी।
5, कुछ दिन पूर्व कानपुर के एक सवे से मालूम हुआ कि कानपुर के भिखारियों की आय 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये मासिक तक है। कितने ही तो ऐसे हैं जिनके पोस्ट ऑफिस और बैंकों में खाते भी है। जिन भिखारी परिवारों की सदस्य संख्या अधिक है उनकी आय उतनी ही अधिक है।
6, संत इमरसन के सामने एक आदमी ने हाथ फैलाकर भीख मांगी तो उन्होंने कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया।
किसी ने पूछा, आपको लाज क्यों आ रही है। उन्होंने कहा, भीख मांगकर इसने मनुष्य शरीर को लजाया।
दुर्भाग्य की मैं भी हूँ उसी चोले में हूँ। 7, एक अंधा बालक सड़क के किनारे रेवड़ी की पुड़िया बनाकर बेच रहा था। एक आदमी को दया आई, उसने बच्चे को कुछ पैसे देते हुए सहानुभूति प्रकट की तो बालक ने कहा, श्रीमान जी, मुझे भीख देकर लज्जित न करें,
मेरी आंखें ही तो खराब हैं और शरीर तो काम कारामद है।
73, मृतक भोज भी अविवेकपूर्ण न हो। प्रश्न,
एक, मृतक भोज के कारण एवं प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। 2, भारतीय आदर्श क्या रहा है। 3, हरामखोरी से क्या हानि है।
4, आत्मा की सद्गति कैसे होती है।
5, मृत्यु टैक्स क्यों लगाया जाता है।
6, हिंदू समाज की सर्वाधिक ब्रह्मपूर्ण मान्यता क्या है।
7, बदली हुई परिस्थितियों में मृतक भोज अनावश्यक क्यों हो गया है।
8, मृतक भोज खाना स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरीत क्यों है। 9, सत्यानाशी कुप्रथाओं का अंत कैसे होगा। 10, मृतक की संपत्ति का सर्वोत्तम सदुपयोग किन 2 कामों में करना चाहिए। कथाएं। 1, पम 0, गजाधर शास्त्री ने एक बार पंडितों की एक सभा बुलाई और यह प्रयत्न किया कि मृतक भोजों की अमान्यता की नई प्रतिस्थापनाएं की जाएं। उन्होंने बहुतेरा कहा कि यह देश कभी संपन्न था तब मृतक भोज पुण्य रहा होगा, पर आज की निर्धनता में यह बिल्कुल उचित नहीं। पर पंडित अपनी टांग अड़ाते और शास्त्र की ही दुहाई देते रहे।
दहकी होकर शास्त्री जी ने सभा भंग कर दी, पर चलते चलते यह कहने से भी न रुके, जिस देश में पंडितों में इतना विवेक न हो कि उचित अनुचित का निर्णय कर सके, उनसे तो गाँव के किसान अच्छे। 2, बिहार के एक गाँव में एक स्त्री का पति मर गया। उस बेचारी के पास जो कुछ था पति की बीमारी में ही स्वाहा हो गया था। इधर मृतक भोज भी करना पड़ा, उसके जेठ ने कर्ज दिया और उसमें उसके हिस्से की सारी जमीन हड़प ली। पीछे विधवा को अपने बच्चों के लिए भीख मांगने पड़ी।
अपनी करुणा कथा विधवा ने पटना में भिक्षा वृत्ति उन्मूलन समिति के सदस्य को बताई। 3, कुंवरपुर बदायूं के माहेश्वरी परिवार ने मृतक भोज को अनैतिक कहकर उसे तोड़ा तो सारे गाँव ने विरोध किया और कहा कि इससे मृतात्मा दुखी होगी। इस पर उन्होंने मृतक भोज में खर्च होने वाले धनराशि से पक्का शमशान घाट बनवा दिया। इस पर गांव वाले बड़े खुश हुए।
माहेश्वरी परिवार के एक सदस्य ने कहा, मृतक भोजों में मृतात्मा की खुशी नाखुशी तो क्या होगी, हाँ खाने वालों की खुशी नाखुशी अवश्य जुड़ी हुई है।
फोर्ट मालवीय जी एक बार एक मृतक भोज में सम्मिलित हुए।
इधर खाना परोसा गया, उधर घर की महिलाएं मृतक की याद कर रोने लगी। मालवीय जी यह कहकर उठ खड़े हुए, मृतक भोज डहकियों को और डहकी बनाना और उनका उपहास करना है, इसके बाद वे कभी किसी मृतक भोज में शामिल नहीं हुए। पांच एक ग्रामीण ने गांधी जी से पूछा, मृतक भोज के बारे में आपका क्या ख्याल है।
गांधी जी बोले, एक प्रथा जिससे हिंदू जाति बदनाम होती है और मूर्ख समझी जाती है।
छह राजर्षि टंडन जी से किसी संबंधी के मृतक भोज में चलने को कहा तो वे बोले, जिस देश में हजारों लोग खाद्यान्न के लिए पीड़ित हों वहां लोग इस तरह अन्न बर्बाद करें और मैं उसका समर्थन करूं, यह हरगिज नहीं हो सकता, तो भोज में नहीं ही सम्मिलित हुए।
सेवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर कभी किसी गांव में जाते तो लोगों को भारतीय समाज में फैली बुराइयां छोड़ने को भी समझाते। एक गांव में वे मृतक भोज के बहिष्कार की बात समझा रहे थे तो एक आदमी बोला, मृतक भोज न करेंगे तो मृतात्मा की सद्गति कैसे होगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले, पहले कितने लोगों के पास अन्न नहीं होता था तो खिलाना पुण्य माना जाता था, आज लोग अशिक्षित हैं तो अशिक्षा दूर करना ही पुण्य है। उस गांव के लोगों ने मृतक भोज ने करने का निश्चय कर गांव में एक पाठशाला खोल दी जो कुछ ही दिन में एक बड़ी शिक्षा संस्थान बन गई। 74 भूत पलीत और उद्भिज देवी देवताओं का जंजाल। प्रश्न
एक, श्रद्धा और विश्वास किस प्रगति के लिए आवश्यक है।
टू अंधविश्वास की परिभाषा कीजिए।
तीन भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग अंधविश्वास में उलझा हुआ है, क्या कारण है। चार, हम जिन्हें भूत प्रेत आदि कहते हैं वह उनसे डरते हैं, वह वास्तव में क्या है तथा वस्तु स्थिति क्या है। पांच, यदि कोई बीमारी आदि हो जाती है तो ओझाओं द्वारा उसे किस तरह का स्वरूप दिया जाता है। छह, यदि यह मान लिया जाए कि भूत प्रेत हैं तो शिक्षित समाज पर उसका प्रभाव न होना क्या सिद्ध करता है।
सेवन, ईश्वर कौन है, क्या ईश्वर अनेक हैं।
आठ, गांवों के पिछड़े लोग किस प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं तथा उनसे उन्हें क्या हानियां हैं। नौ, भूत पलीत और इन उद्भिज देवी देवताओं के जंजाल से छूटने के लिए क्या किया जाना चाहिए।
कथाएं।
एक, एक आदमी बाहर तीर्थयात्रा पर जाने लगा तो उसने अपना धन एक स्थान पर छिपा दिया और पहचान के लिए एक झंडी गाड़ दी।
गांव वाले थे अंधविश्वासी, उन्होंने समझा कहीं जाने पर झंडी गाड़नी चाहिए, फलस्वरूप किसी को मिल दो मिल जाना होता वह भी झंडी गाड़ कर जाता। पहले वाला आदमी लौट कर आया तो उसने झंडियां ही झंडियां गड़ी देखी तो बड़ा हैरान हुआ, उसका धन मुश्किल से मिला। अंधविश्वास के कारण सभी को ऐसी ही परेशानी होती है। टू कानपुर का समाचार है, एक गृहस्थ अपनी बीमार लड़की को दवा कराने के बजाय किसी मुसलमान ओझा के पास ले गए। ओझा लड़की को एक तरफ ले गया।
शाम तक बैठे प्रतीक्षा करते रहने के बाद जब खोज की गई तो पता चला ओझा लड़की को लेकर रफू चक्कर हो गया। बाप रोने लगा तो एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा, अब क्यों रोते हो,
देवताओं से कामना सिद्धि का विश्वास नहीं छोड़ेंगे तो यही सब होगा। थ्री, विवेकानंद जी के पास कलकत्ते की एक स्त्री आई और बोली, महाराज मेरे लड़के को भूत आता है। विवेकानंद बोले, बहन जाओ लड़के का इलाज कराओ, कहीं तुम्हारे मन का भूत ही बच्चे का जीवन न हर ले। फोर, गांव के बीचों बीच पेड़ था।
रात में उससे पत्थरों की वर्षा होती, लोग डर जाते इसमें भूत है, इसलिए लोग रात में घर से बाहर न निकलते, उन दिनों उनकी खूब चोरियां हुई, लोगों को विश्वास हो गया सारी करतूत पेड़ वाले भूत की है। एक दिन एक युवक ने हिम्मत की और पेड़ पर चढ़ गया तो पता चला गांव का चमार पत्थर बरसा रहा है। उसने उसे पकड़कर नीचे उतारा और अच्छी पिटाई की, गांव वालों ने युवक के साहस की सराहना की।
फाइव, एक व्यक्ति संत नामदेव के पास जाकर पूछने लगा, भूत होता है या नहीं। नामदेव बोले, होता भी हो तो यह जान लो कि यह मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनुष्य को तो उसका भय ही बिगाड़ता है।
छह, एक राजा ने देखा शालिग्राम की मूर्ति के ऊपर तो चूहे फुदक रहे हैं, उसे लगा चूहा बड़ा देवता है, अतएव वह उसे दिन से चूहों की उपासना करने लगा।
एक दिन एक बिल्ली चूहे को खा गई तो उसने बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। एक दिन एक कुत्ते ने बिल्ली को धर पटका और तब से राजा कुत्ता का उपास्य बन गया।
एक दिन किसी बात पर नाराज होकर रानी ने कुत्ते की टांग तोड़ दी, फिर क्या था, राजा ने रानी की पूजा प्रारंभ कर दी। एक दिन किसी भूल पर उन्होंने रानी को डांटा तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं ही बड़ा देवता हूं, अतः वे अपनी उपासना करने लगे। एक दिन बुखार में पड़े राजा के मुंह से अनायास निकल गया है राम, और तब उन्होंने अनुभव किया भगवान ही सबसे बड़ा देवता है। उस दिन से वे देवताओं की उपासना छोड़कर भगवान का भजन करने लगे।
सेवन, कॉलेज के लड़के अमरूद तोड़कर खा जाते, उनसे बचाव के लिए मालिक ने अफवाह फैला दी,
इन पेड़ों में भूत रहता है।
सब लड़के डर गए पर एक लड़का सवेरे से शाम तक बैठा रहा। बगीचे का मालिक पहुंचा और बोला, यहां क्या कर रहे हो, भूत आ जाएगा तो गिरा देगा।
युवक ने उत्तर दिया, सबसे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, भूत तो अभी तक तो आया नहीं, अब देखता हूं कब तक आता है।
यह साहसी बालक विवेकानंद थे जिन्होंने बगीचे के मालिक से वचन ले लिया कि वे फिर कभी इस तरह झूठ बोलकर बच्चों को डराएंगे नहीं। 75 पशुबलि भारतीय धर्म पर एक कलंक। प्रश्न,
एक देवता की परिभाषा कीजिए। दो, देव पूजन के समय उनके स्वागत सम्मान के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए।
3 बलिदान की प्रचलित प्रथा किस प्रकार अनुपयुक्त है। 4 यदि यह मान लिया जाए कि देवता पशुबलि से प्रसन्न होते होंगे तो उस ईश्वर का स्वरूप किस तरह का होगा। 5 बलिदान की परिभाषा कीजिए।
6 पशुबलि के प्रचलन के क्या कारण हो सकते हैं। 7 क्या पशुबलि भारतीय देवताओं को प्रिय है।
8 पशुबलि समाप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए।
9 आधुनिक युग में बलि की प्रथा में कैसे संशोधन किया जावे।
10 पशुबलि का समर्थन कौन करता है। प्रश्न, 1 भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे थे। कुछ लोग एक पशु को बांधकर उसकी बलि देने जा रहे थे। बुद्ध ने उन्हें रोका तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बलि से देवता प्रसन्न होते हैं।
बुद्ध बोले, देवों के नाम पर अपने सुख के लिए जो लोग पशुओं को मारते हैं वह दूसरे जन्म में घोर कष्ट पाते हैं।
यह सुनकर ग्रामवासियों ने जीव हिंसा त्याग दी। 2 एक व्यक्ति एक गधे पर इतना बोझा लादे था कि गधे का चलते न बनता था। बेचारा पिसा जा रहा था। महाप्रभु ईसा ने कहा, बोझ हल्का कर लो, तो वह आदमी बोला, महाराज यह तो गधा है।
बोझ ही तो लदा है, कोई मार तो रहे नहीं। ईसा बोले, पशु समझकर उस पर असह्य भार लादना भी हिंसा ही है। जिस तरह मनुष्य को अधिक बोझ से कष्ट होता है, इसे भी होता है।
उस मनुष्य ने बोझा हल्का कर दिया। 3 महावीर स्वामी एक गांव से जा रहे थे। कुछ लोग एक पशु को बांधे बलि की तैयारी कर रहे थे।
महावीर स्वामी के मना करने पर ग्रामवासी बोले, इससे देवता प्रसन्न होंगे। इस पर महावीर ने कहा, यदि देवता पशु बलि से प्रसन्न हो सकते हैं तो वे मनुष्य की बलि पाकर और अधिक खुश होंगे। बोलो, तुम में से कोई बलि के लिए तैयार है।
सारे लोग एक एक करके खिसक गए, वह पशु पड़ा रह गया। महावीर ने उसके बंधन काटकर उसे मुक्त कर दिया।
4 भावनगर की खेडियार माता के मंदिर में चंडी पाठ के अवसर पर बकरे की बलि दी जाती थी। एक बार जब बलि दी जाने को थी, कस्तूरी नामक एक ब्राह्मण बालिका वध स्थल पर जा खड़ी हुई। लोगों ने उसे हटने को कहा तो उसने कहा, जो देवी बकरा खाकर प्रसन्न हो सकती है वह मनुष्य खाकर तो और भी प्रसन्न होगी। आप लोग मेरी बलि दीजिए।
खबर महाराज तक पहुंची। वे बालिका की इस जीव दया से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पशुबलि हमेशा के लिए बंद करा दी। 5 लोग माने नहीं, प्लेटों को भी उत्सव में पकड़ ले गए, पर वहां पशुबलि का दृश्य देखा तो उनकी आत्मा ही करा उठी।
उन्होंने लोगों की पशुबलि न करने को कहा तो लोग पूछ बैठे, जिन्होंने यह प्रथा चलाई क्या वे मूर्ख थे। प्लेटो बोले, मैं नहीं जानता वे मूर्ख थे या नहीं, पर इतना अवश्य था कि उनके हृदय में दया और करुणा नहीं रही होगी। लोग इस कथन से प्रभावित तो हुए, पर बोले, फिर बलि कैसे दें। प्लेटो ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाए और उसे काटते हुए कहा, निर्जीव मूर्ति के लिए निर्जीव की ही बलि दी जा सकती है।
यदि देवता को दिव्य भाव मानते हो तो फिर उसके आगे बुरे विचारों की बलि दो। उस दिन से लोगों ने पशु बलि त्याग दी। 6 समर्थ गुरु रामदास एक गांव में उपदेश दे रहे थे, तभी पता चला गांव का पटेल देवी के आगे मुर्गे की बलि देने जा रहा है। समर्थ उठे और पटेल व उसके साथी को जा पकड़ा।
दोनों हाथों से उन्हें घसीटते हुए बोले, आज मुझे देवी ने स्वप्न दिया है कि मेरा पेट मुर्गे से नहीं 2 मुस्टंडों से भरेगा, सो तुम्हारी बलि देंगे।
पटेल घबराया, क्षमा मांगी और फिर कभी बलि न देने की शपथ ली। तब कहीं समर्थ ने उन्हें छोड़ा। 76 प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बने। प्रश्न,
एक क्या यह उचित है कि जिस तरह अविकसित जीव परस्पर दुर्व्यवहार करते हैं हमें भी करना चाहिए।
2 धर्म अध्यात्म और दर्शन का प्रयोजन क्या है।
3 घोड़े गधे तथा अन्य सवारी में काम आने वाले तथा वजन ढोने वाले पशुओं से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
4 निर्दयता निवारक धारा के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं।
5 घायल अशक्त जानवरों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। 6 क्या हमें पक्षियों को निर्दयता पूर्वक पिंजरों से बंद करना चाहिए।
क्यों।
7 क्या रेशम के कपड़े पहनना ठीक है, नहीं तो क्यों। 8 कस्तूरी चंवर मोती बालों वाले बच्चों के कोट मोजे दस्ताना टोपी आदि किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। 9 चमड़े की जगह हमें किन वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए कि निरीह प्राणियों का संहार न हो। 10 क्या मांसाहार द्वारा हम अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं।
कथाएं। 1 कंधे पर लहू लुहान कुत्ते को बैठाए एक व्यक्ति शहर की ओर जा रहे थे।
कई मोटर ट्रक वालों से कहा पर किसी ने जगह न दी। अंत में वे 22 मील दूर पैदल ही शहर पहुंचे और जानवरों के अस्पताल में कुत्ते का इलाज कराया। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करते हैं, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की यह घटना बताती है कि प्राणियों के प्रति उनके हृदय में कितनी करुणा थी।
टू आश्रम में एक कुतिया ने पिल्ले दिए। पिल्ले दिन भर आश्रम में घूमते रहते और जहां तहां टट्टी कर देते। गांधी जी से एक नजदीकी सज्जन ने कहा, बापू पिल्लों को मरवा देना चाहिए, टट्टी करके फर्श खराब कर देते हैं।
मरवा देने की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, वह कुतिया बोल नहीं सकती तो भी माँ है, उसे बच्चों के मरवाए जाने का पता चल जाए तो मालूम है उसे कितना दैख होगा।
उन सज्जन को इससे आगे कुछ बोलते नहीं बन पड़ा। थ्री इब्राहिम लिंकन कार में बैठे संसद जा रहे थे। रास्ते में देखा एक सुअर का बच्चा कीचड़ में फंसा तड़फड़ा रहा है। कपड़े खराब होने की आशंका का भी ध्यान न देकर उन्होंने पहले सुअर के बच्चे को निकाला, पीछे गंदे कपड़ों में ही पार्लियामेंट गए। फोर लोगों ने बहुतेरा कहा, कुत्ता पागल है, इसे मत छोड़ो, काट लेगा। पर मदन मोहन मालवीय की दयालुता थी कि ये माने ही नहीं, कुत्ता गुर्राता रहा और वे उसका घाव धोते रहे, घाव धोकर दवा लगा दी, कुत्ते को आराम पड़ा और सो गया।
जब तक पूरी तरह अच्छा नहीं हो गया मालवीय जी उसकी दवादारू करते रहे।
फाइव भगवान बुद्ध समाधि में थे, कभी धूप सिर को तपाती तो कभी मेह ठिठुरन पैदा करता। यह देखकर सरपराज मुचलिंद ने बुद्ध के शरीर में तीन फेरे डालकर उनके सिर पर छाया कर दी। एक गांव वाला आया, उसने यह दृश्य देखा तो डरकर भाग गया। समाधि खुली तो सरपराज वहां से हटकर अपने बिल की ओर चल पड़े। यह देखकर ग्रामीण ने पूछा, भगवान सांप तो जहरीला और गुस्से वाला जीव है, आपको काटा नहीं इसने? बुद्ध हंसकर बोले, तात जो प्राणियों को भी आत्मा और मित्र भाव से देखता है उसका प्राणी भी अहित नहीं करते।
छह बास कबूतर से कहा, अरे कबूतर भाग जा, इस डाली से देखता नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूँ, चाहूँ तो तुझे अभी मारकर खा जाऊं।
कबूतर बोला, लेकिन श्रीमान जी इसमें आपकी क्या विशेषता रही? हर शक्तिशाली अपने से कमजोर को मार सकता है, किसी को जिंदा करके दिखाओ तो जानूं कि तुम शक्तिशाली हो। बास को अपना मुंह छुपाना मुश्किल पड़ गया।
सात मित्र ने गुलेल बना दी और अपने साथ ले गया चिड़ियों का शिकार करने। जैसे ही उसने एक चिड़िया पर निशाना साधा कि उसने शोर मचा लिया, चिड़िया उड़ गई। मित्र दिन भर हैरान रहा, एक भी चिड़िया न मार सका।
मित्रता तोड़ने की कसम दी जीव मात्र में आत्मा देखने वाले युवक ने मित्रता तोड़ ली, पर जीव हिंसा न होने दी। कितने अच्छे थे वह अल्बर्ट स्वाहत्सर। 77 विवाहों के आदर्श ऊंचे रखे जाएं। प्रश्न,
एक विवाह क्या है? आजकल विवाह संबंध किन आधारों पर तय किए जाते हैं?
टू विवाह संबंध का सच्चा आधार क्या होना चाहिए? थ्री गृहस्थ के सुख शांति की आधारशिला क्या है? फोर विवाहोत्सव कैसा होना चाहिए? विवाहोत्सव में होने वाले अपव्यय पर प्रकाश डालिए।
पांच विवाहों की रूपरेखा किस तरह की बनानी चाहिए? छह आभूषण क्यों आवश्यक हैं? सात विवाह में लड़के व लड़की वालों की मनोभूमि कैसे होती है? आठ कृतज्ञ किसे होना चाहिए व क्यों? नौ आज के युवकों के क्या कर्तव्य हैं? दस हिंदू समाज के संगठित न होने के प्रमुख कारण क्या है?
कथाएं। वन विश्व भारती महिला कॉलेज श्रीनगर के प्राध्यापक श्री माखनलाल खरे और गुजरात की नेत्रहीन युवती कुजीरो गणेशी का विवाह दिल्ली के मॉडल टाउन में नगर निगम के प्रमुख पार्षद श्री जय प्रकाश गोयल के निवास स्थान पर सादगी पूर्वक संपन्न हुआ। गणेशी ने शगुन में मिला धन अंध विद्यालय को दान कर दिया। इस विवाह का अभिनंदन किया गया जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए और श्री खरे जी को हृदय से सराहा।
दो निजामपुर के श्री राधिकाचरण ने अपने पिता और परिवार वालों की इच्छा पर उस समय पानी फेर दिया जब युवक ने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी काली लड़की से ही शादी करेंगे।
घर वाले दहेज के लालच में सौदा कर चुके थे, वह तोड़ना पड़ा। विवाह नगर के ही वकील कमलाकांत की काली लड़की शशिकला के साथ सानंद संपन्न हुआ। थ्री शाहजहांपुर में अनोखा विवाह हुआ। शालिग्राम की बटिया का तुलसी के पौधे के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। खूब पैसा खर्च हुआ और चढ़ौती भी चढ़ी।
पढ़े लिखे लोगों ने कहा, क्या बुरा है, हिंदुओं में विवाह का आदर्श भी तो अब फेरा मात्र रह गया है, चाहे वह बटिया का हो। मनुष्य शरीरों का आदर्श जो कभी थे अब कहाँ रह गए। चार सुकन्या के पिता ने बहुत मना किया पर उसने वृद्ध च्यवन से ही शादी की और कहा, विवाह शरीरों का नहीं आत्माओं का मिलन है, मैं इस दृष्टि से विवाह कर रही हूँ कि लोक सेवक को सहयोग मिलेगा और मुझे आत्मज्ञान।
530 जनवरी 71 के ग्वालियर यज्ञ में श्री भूदेव शर्मा का विवाह प्रभा शर्मा के साथ आदर्श रीति से संपन्न हुआ।
विवाह की विशेषता यह थी कि प्रभा के दोनों पैर कटे हैं, वह काष्ठ के पैरों से चीलती है। श्री भूदेव ने कहा, मैं यह विवाह इस भावना से कर रहा हूं कि प्रभा को सहारे की आवश्यकता है। प्रभा ने अपनी पति के चरण स्पर्श किए, उस समय उपस्थित सभी लोगों की आंखों पर आंसू आ गए।
श्री शर्मा को सबने पूरी पूरी बधाई दी। ऐसा ही एक विवाह बम्बई में कुमारी प्रभावती ने एक अपंग सैनिक अधिकारी के साथ किया। सैनिक अधिकारी पंकज जोशी सेना में युद्ध के समय सुरंग फट जाने से घायल हो गए थे। प्रभावती के हृदय में विद्यमान सेवा, सहानुभूति, स्नेह और सहयोग की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। 6. मेडागास्कर में युवक फिलिप्स और युवती एनन का विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही दिन बाद अनबन रहने लगी। कुछ दिन पीछे एनन के बाबा उनको देखने आए। वह 10 दिन उनके साथ रहे। बाबा को उनकी अनबन का पता न चल पाए। इसके लिए 10 दिन दोनों एक दूसरे के प्रति नाटकीय प्रेम प्रदर्शन और समर्पण का भाव दिखाते रहे। वृद्ध ने चलते समय हार्दिक संतोष के साथ इन्हें इसी तरह सुखी रहने का आशीर्वाद दिया।
10 दिन के परस्पर समर्पण ने कुछ ऐसा आनंद दिया कि पति पत्नी में पुनः प्रेम पैदा हो गया जो जीवन भर कभी नहीं टूटा। 7. बोगोता कोलंबिया में विवाह प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खोला गया है जहां सुखी दाम्पत्य जीवन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
यौन संबंधों और शिशु पालन की भी शिक्षा दी जाती है। यहां से निकले स्नातकों के अधिकांश विवाह सफल होते हैं। 78. बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा।
एक बाल विवाह के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। शारदा एक्ट तथा दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून क्यों प्रभावहीन है? बाल विवाह में मानसिक एवं शारीरिक हानियां क्या है? 4. बाल विवाह से उत्पन्न संतान किस तरह की होती है? 5. बाल विवाह लड़की के लिए किस प्रकार का घातक सिद्ध हो सकता है? 6. बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लड़कियों पर किस प्रकार बुरा पड़ता है? 7. बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन के अनुरूप क्यों हो जाती हैं? 8. क्या छोटी आयु में विवाह कर देने से लड़कियां शीलवान बनी रह सकती हैं? 9. उस कारण को समझाओ जिसके कारण लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता था।
कथाएं। 1. भारतीय समाज में बाल विवाह जैसी हानिकारक परंपरा देखकर श्रीहरि विलास शारदा का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध क्रांति खड़ी कर दी। रूढ़िवादी पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया, पर वे अंततः शारदा एक्ट पास कराने में सफल हुए।
इस तरह बाल विवाह पर कानूनी रोक लग सकी।
2. गुरु नानक को पता चला कि पड़ोस के गांव का एक धनी बूढ़ा एक 14 वर्षीय कन्या से विवाह कर रहा है, जबकि उसके कई स्त्रियां पहले भी थीं।
मजे की बात तो यह कि गांव का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा था। नानक उस गांव में पहुंचे और तमाम लोगों को इकट्ठा कर उस धनी बूढ़े को भी बुलाया और सबके सामने बोले, क्या यह सब लोग मर गए हैं जो अपनी अर्थी उठवाने के लिए गरीब कन्या को खरीद रहा है?
गांव वाले विरोध में खड़े हो गए और उस मनचले बूढ़े का मंसूबे सफल नहीं होने दिया।
3. भरतपुर की घटना है। एक विवाह हो रहा था, लड़की बहुत छोटी थी।
जब पाणिग्रहण के समय पुरोहित ने लड़के को कहा, लड़की का हाथ पकड़ो। वर महोदय ने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की ने तमाचा मारा और बोली, अब की हाथ पकड़ा तो पटक कर चढ़ बैठूंगी। अबोध बालिका के इस व्यवहार पर कुछ लोग हंस पड़े, कुछ भीतर ही भीतर बड़े दुखी हुए कि यह विवाह है या भारतीय समाज की छीछालेदार।
4. प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री कर्वे ने एक बार पढ़ा कि दुनिया में सबसे अधिक बाल विधवाएं भारतवर्ष में ही हैं। उन्हें भारतवर्ष में प्रचलित बाल विवाहों का बड़ा डैक हुआ और उसी समय इस कुप्रथा को सुधारने की प्रतिज्ञा की। अपना सारा जीवन इसी में लगाकर उन्होंने देश में विवाहों और विधवाओं का जीवन सुधारा।
5. मद्रास की एक 13 वर्षीय लड़की को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर के पूछने पर मालूम हुआ कि उसका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था।
घर की दुष्टा स्त्रियों ने उसे बलात् गृहस्थ के लिए विवश किया। लड़की प्रसव पीड़ा सहन न कर पाई, उसका वहीं देहांत हो गया। ऐसी न जाने कितनी आत्मवयस्क मृत्यु भारतवर्ष में बाल विवाह के कारण होती हैं। 79. खर्चीली शादियां हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। प्रश्न।
एक विवाहोत्सव के परंपरा प्राचीन काम में कैसी थी? 2. आजकल विवाहोत्सव कमर तोड़ भार क्यों कहा जाता है? 3. हमारे देशवासियों की औसत आय क्या है? 4. विवाहोन्माद से दोनों पक्षों को कैसे हानि होती है? 5. विवाह भार का सामना करने के लिए समाज के विभिन्न अंग किस किस प्रकार की बेईमानी करते हैं? 6. यदि विवाह में कम खर्च किया जाए तो समाज को क्या लाभ होगा? 7. बढ़ी हुई आमदनी का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है?
8. विवेकशीलता का तकाजा क्या है?
9. विवाह प्रथा में सुधार का प्रारंभ कैसे किया जाए? युग की मांग क्या है? 10. विवाहोत्सव की योजना के सही आधार क्या हैं?
कथाएं।
एक दिल्ली की अदालत में एक गबन की केस आया।
बयान के समय लोग आश्चर्यचकित रह गए जब अभियुक्त ने बिना झूठ बोले बता दिया, मैंने गबन किया है क्योंकि मुझे अपनी कन्या के विवाह के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे।
हिंदू समाज इतना कृतघ्न है कि बिना रुपये लिए लड़कों के विवाह नहीं करता। 200 रुपये मासिक से घर खर्च मुश्किल से चलता है, फिर विवाह के लिए पैसे कहाँ से लाता?
अदालत में उपस्थित हिंदुओं को आंखें नीची हो गईं। 2. ऊधमपुर के राव रईस उमराव सिंह के 4 बेटियां थीं।
उनकी शादियों के धूम धड़ाके में सारी पकी पकाई जायदाद बिक गई।
आखिरी कन्या की शादी की तब वे सारी जायदाद बेचकर 20,000 के कर्जदार हो गए।
अब वे एक फर्म में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। तीन, सहारनपुर के एक इंजीनियर के पिता ने उसकी शादी में 10,000 का दहेज लिया।
लड़की वालों को आखिर तो शादी करनी ही थी, अपना एकमात्र घर बेचकर दहेज चुका दिया। लड़का समझदार था, विवाह हो गया तो सारा दहेज पिता को देकर बोला, पिताजी संभाल लीजिए, सारे रुपये ठीक मिल गए ना? पिता ने कहा, हाँ मिल गए, अब चलो घर तो चलें।
लड़के ने कहा, अब घर किस वास्ते जाएं, 10,000 में बिक गए, अब यहीं रहेंगे। लड़की और इनके पिता की सेवा करेंगे, आपकी तो मेरा मूल्य मिल गया। पिता सिर पटक कर लौट गया, पर लड़का टस से मज न हुआ।
विचारशील लोगों ने लड़के की प्रशंसा की और कहा, हिंदू धर्म का कोण ऐसे ही दूर होगा। फोर, एक उपदेशक भाषण दे रहे थे, लोगों को मिलावट नहीं करनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए।
एक व्यक्ति खड़े होकर बोले, महाराज विवाहों में जो लंबी रकमें मांगी जाती हैं वह कहां से पूरी करें? उपदेशक ने अनुभव किया, आज लोगों को विवाहोन्माद से बचाना सबसे बड़ा उपदेश है, सो उस दिन से वे उपदेश करने के बजाय समाज सुधार में जुट गए।
5, लंदन से एक सज्जन अपने पुत्र का चूड़ाकर्म संस्कार कराने भारत आए। यहां से लौटकर गए तो उन पर $10,000 का कर्ज हो गया।
एक अंग्रेज ने हंसकर कहा, जो संस्कार दीन और दरिद्र बनाए उनकी उपयोगिता क्या है? वह सज्जन बहुत लज्जित हुए और सोचने लगे, हमें संस्कारों के बाह्य रूप की नहीं उनके आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए।
80, बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठाएं। प्रश्न 1, दहेज तथा शादियों का असह्य अपव्यय समाज को अध्यापन की ओर किस तरह ले जा रहा है?
2, पहले शादियों पर अपव्यय होने के क्या कारण थे? 3, अब अपव्यय करने पर समाज हमसे किस प्रकार का बर्ताव करता है? 4, विवाहोन्माद में होने वाले इस सारे अपव्यय का दोष बेटे वाले के सर पर क्यों थोपा जा रहा है? 5, हर बेटे वाला दहेज लेने के बाद भी घाटे में किस प्रकार रहता है? 6, यह आप किस तरह कह सकते हैं कि बेटे वाला दया का पात्र है? 7, इस आदर्शवादी विवाह पद्धति में बेटे वाले को किस तरह रोल अदा करना होगा?
8, बेटी वाले को किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? कथाएं 1, अमरेली गुजरात के भीलड़ी ग्राम में एक शादी हो रही थी। चौथी भंवर चल रही थी कि लड़के वालों ने दहेज की रकम मांगी। लड़की वालों ने असमर्थता प्रकट की तो वर के पिता तलवार लेकर हाथ पाई पर उतर आए। विवाह मंडप युद्ध अखाड़ा बन गया।
विवाह किसी प्रकार हो गया, पर दोनों संबंधी एक दूसरे के हमदर्द बनने की अपेक्षा शत्रु बन गए। 2, राजेंद्रनगर में आए एक बारात में 200 से भी बड़ी कुमुक देखकर लड़की वाले घबरा गए। किसी तरह एक दिन खिला दिया, पर बराती 3 दिन ठहरने के लिए अड़ गए। इस पर झगड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से झगड़ा शांत हुआ था कि कुछ बराती ग्रामवासियों की लड़कियों से शरारत कर बैठे, फलस्वरूप उन्हें पीटकर भगाया गया। गांव वालों ने निश्चय किया है कि कोई विवाह हो बारात में 10 आदमियों से अधिक न ले चले जाएं और न ही बुलाए जाएं।
3, नई दिल्ली के बिलिंगडन अस्पताल में 24 वर्षीय शांति देवी का एसिड पी लेने के कारण देहांत हो गया।
शांति देवी ने बयान देते हुए बताया कि उसके पति को विवाह में स्कूटर नहीं मिला था, इसी कारण वह विवाह के बाद से ही उस पर अत्याचार करता आ रहा था।
विवाह राजेंद्रनगर के महाराज कृष्ण से हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी।
इसी तरह पत्नी को जिंदा जलाने का एक मामला आगरा सेशन जज की अदालत में फतेहाबाद से आया है।
दहेज कम मिलने से जली भुनी सास ने उसे धोखे से गिरा दिए और आग लगा दी।
बहू की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। 4, सचिनठी थाना कानपुर के पीराजपुर ग्राम की मुन्नी देवी नामक कन्या का विवाह दहेज न दे सकने के कारण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सास उसे बहुत कष्ट देती थी।
लड़की ने रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। कानपुर के ही मंडा नामक ग्राम की 19 वर्षीय जनकदुलारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि दहेज कम मिलने के कारण उसके पति सास और ससुर उसकी पिटाई करते आ रहे थे।
लड़की अपने घर वालों से बराबर शिकायत करती आ रही थी।
बाद में उसने तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अधजली लाश बरामद की। 5, अंबाला की एक शादी में वर महोदय के साथ रेडियो सिंगर लड़कियां भी आई। उन्होंने लड़के को बताया कि लड़की कोई खास अच्छी नहीं। रूप के दीवाने वर भाग खड़े हुए।
पिता उन्हें किसी तरह पकड़कर लाए तो लड़की ने रूप के सौदाई लड़के से विवाह करने से इनकार कर दिया।
बारात वापस लौट गई। 6, बाराबंकी से एक बारात कानपुर आई। वर का पिता 10,000 का दहेज पहले ही ले चुका था। विवाह के समय से ही वर महोदय ट्रांजिस्टर और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।
कलेवा के समय वे ऐसे अड़े की भोजन ही नहीं किया। रात भर चकल्लस रही और उसका अंत तब हुआ जब लड़की ने ऐसे लड़के के साथ जाने से ही इनकार कर दिया।
अध्यापकी करके उसने अपना जीवन निर्वाह करना और आजीवन कुमारी रहने का व्रत ले लिया। 7, गोलावे बिहार में आई एक बारात में हुई आतिशबाजी ने एक युवक लड़के के प्राण ले लिए। 7-8 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। गांव वालों ने आतिशबाजी फिर कभी न बुलाने का निश्चय किया। आतिशबाजी लड़के वाले अपनी शान के लिए लाए थे। 8 दरियागंज के श्री किशनलाल ने अपने पुत्र सुधारे की शादी में 10,000 दहेज लिया, पर यह दहेज उस समय भारी पड़ा जब लड़की वालों ने दुगुने मूल्य के जेवर, आतिशबाजी और वेश्या नृत्य की मांग की।
विवाह का मजा बारातियों ने और गांव वालों ने लूटा, जबकि दोनों परिवार कर्ज ग्रस्त हो गए।
81 उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या का समाधान। प्रश्न 1. मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य नारी का स्तर ऊंचा उठाए जाने पर निर्भर है, सिद्ध कीजिए।
2. आजकल लड़कियों को शिक्षा दिलवाना क्यों आवश्यक है।
3. आज का युवक अपनी पत्नी को किस प्रकार धोखा दे सकता है,
इसका कारण क्या है। 4. महंगाई के इस जमाने में नारी का क्या कर्तव्य हो जाता है।
5. उच्च शिक्षा कन्या के विवाह न होने के 2 कारण बताइए। 6. उच्च शिक्षित कन्या को फिर किस तरह का जीवन शादी के बाद व्यतीत करना पड़ता है। 7. नारी के नेतृत्व से समाज का क्या कल्याण होगा।
8. शिक्षित नारी के विवाह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किन किन धारणाओं को बदलना चाहिए।
9. शिक्षित लड़की खुद ही दहेज किस प्रकार से है। कथाएं
1. ताजकुंडिया की एम
ए पास कन्या ने कक्षा 10 पास अध्यापक से विवाह कर लिया।
अपने समकक्ष या अधिक पढ़े लिखे लड़के मिलते तो बहुत थे, पर शिक्षित होने पर भी वे दहेज और विवाह की कुरीतियों से मुक्त न थे।
तभी युवती ने यह निर्णय लेकर एक मिसाल कायम की कि कम पढ़े युवक खराब नहीं। कमला नामक इस लड़की ने स्वयं भी अध्यापन किया और अपने पति को अब अपने समकक्ष पढ़ा भी लिया। 2. हजरत कलां के प्रिंसिपल श्री गिरधारीलाल जी के सामने अपनी एम ए कन्या कृष्णा के संबंध की चिंता की। पढ़ाने के कारण कन्या सयानी हो गई थी, यह समस्या उनके मित्र राजेश ने कम आयु के किंतु अत्यंत स्वस्थ लड़का ढूंढकर हल कर दी।
वर वधु दोनों अति सुखी है।
3. बेमित्रा दुर्ग के इंटर पास श्री प्रभाकर कृष्ण ठोके इंटरमीडिएट ने बी ए पास कन्या कला से आदर्श विवाह किया। आदर्श में एक आदर्श यह भी है कि कन्या अध्यापिका थी और लड़के से अच्छा वेतन पाती थी। उन्होंने लड़के की अधिक योग्यता की मूल मान्यता को ध्वस्त कर दिया। 4. मथुरा की एक अध्यापिका ने अपने एक संबंधी अनपढ़ युवक से विवाह कर लिया। विवाह में अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए और वर वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसे आदर्श ही वैवाहिक कुरीतियों को तोड़ेंगे। लड़का घर की देखभाल करता है और अध्यापिका जीविकोपार्जन करती हैं। शाम को युवक को पढ़ाने का भी नियम बनाया है। 82. विधुर तथा विधवाएं समान न्याय के अधिकारी। प्रश्न 1. सिद्ध करो नर नारी भगवान की दो भुजाएं हैं।
2. क्या नारी भी कर्तव्य तथा अधिकार में पुरुषों के समान नहीं। 3. पति पत्नी के प्रति वफादार कैसे रह सकता है।
4. हिमालय के जानसर बाबर की प्रथा का वर्णन करो, उपयोगिता बताओ। 5. नारी को हीन मानने के क्या दुष्परिणाम हुए। 6. विधवा को समान न्याय किस प्रकार मिल सकता है।
7. विधवा विवाह के लिए क्या आवश्यक है। 8. विधवाओं के साथ क्या उदारता बरती जानी चाहिए।
कथाएं 1. समाज सुधारक महर्षि कर्वे से एक व्यक्ति ने कहा, विधवा विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार विवाह से स्त्री अपवित्र हो जाती है।
कर्वे ने पूछा, पुरुष में ऐसी क्या बात है जो कई बार विवाह करने पर भी अपवित्र नहीं होता।
उन सज्जन को कोई उत्तर देते न बन पड़ा।
2. महात्मा गांधी जी से एक गांव के कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि विधवा विवाह होने चाहिए। वे गांधी जी से मिले और तरह तरह के शास्त्रीय प्रमाण देने लगे। गांधी जी बोले, मेरे पास सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज के अश्लील वातावरण में जब पुरुष संयमित नहीं रह सकता तो बेचारी स्त्रियों से ही उसकी अपेक्षा क्यों की जाए।
वे दुराचारियों बने, इससे अच्छा है उनका पुनः विवाह हो जाए।
3. अकोला के एक डॉक्टर एल
टी शाह ने नलिनी शाह से विधुर विवाह किया।
विशेषता यह थी कि दोनों की ही पहले विवाह के 3-3 बच्चे हैं। सभी बच्चे हिल मिलकर रहते हैं।
4. एक पंडित जी बोले, विधवा विवाह शास्त्रीय है। एक प्रगतिशील युवक ने पूछा, महाराज यह तो बताओ राम कौन थे। पंडित जी बोले, इतना भी नहीं जानते, वे तो अवतारी पुरुष भगवान थे। युवक बोला, सुना है उन्होंने तारा की शादी सुग्रीव और मंदोदरी की विभीषण से करा दी थी, क्या यह विधवा विवाह नहीं थे।
पंडित जी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था।
5. एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1915 से लेकर अब तक भारतवर्ष में विधवा विवाह में 15, 18, 35, 35 और 96 के अनुपात से वृद्धि हुई।
इससे पता चलता है कि लोग अब इस बुराई को समझ चुके हैं और विधवाओं के विवाह का औचित्य मानने लगे हैं।
6. धनबाद के श्री ज्वाला प्रसाद जी अग्रवाल ने जाति भाइयों का विरोध ताक में रख दिया और अपनी पुत्री सुशीला का पुनर्विवाह एक पढ़े लिखे युवक के साथ कर दिया। शिक्षित व्यक्तियों ने श्री अग्रवाल जी और युवक सुरेश कुमार को बड़ी प्रशंसा की। सुशीला 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, उसे कोई संतान नहीं थी। 7. परसदेपुर फतेहपुर के श्री कन्हैयालाल नामक एम ए
पास युवक को दहेज में लंबी धनराशि मिल रही थी, तिस पर भी उन्होंने यह कह दिया कि कुंवारी लड़की से तो सभी शादी कर लेते हैं, मैं किसी असह्य विधवा से क्यों न शादी करूं। उन्होंने गांव की एक विधवा से जाति पाति के बंधन तोड़कर शादी कर ली।
शिक्षित व्यक्तियों ने उनके इस साहस की बड़ी प्रशंसा की। 83 मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद से जूझें। प्रश्न:
एक बदले हुए जमाने में विवाह पर अधिक खर्च करना अनुचित है, सिद्ध करें।
टू: दहेज की प्रथा नले अभिभावकों को बेईमान बना दिया है, क्यों?
तीन: विवाह की कुरीतियों पर प्रकाश डालें तथा उनसे होने वाली हानियां दर्शाएं। चार: समय की पुकार क्या है?
5: शौर्य एवं साहस के साथ विवाहोन्माद के विरुद्ध आंदोलन चलाना क्यों आवश्यक है? 6: अनीति के विरुद्ध भगवान की भी अवज्ञा की जा सकती है, इससे क्या समझते हो?
7: विवाह के संबंध में युवकों के क्या कर्तव्य हैं? 8: भारतीय समाज में विवाह की प्रथा में क्या क्या संशोधन होना आवश्यक है?
प्रश्न: 1: दुर्यावा U0+0 के सेठ मुकुंदीलाल तत्परतापूर्वक लड़की की तलाश कर रहे थे, लोगों ने समझा वह अपने लड़के के लिए संबंध खोज रहे हैं।
जब संबंध तय हो गया और वे अपने लिए कपड़े आदि बनवाने लगे, तब पता चला कि उन्हें बुढ़ापे में शादी का शौक चढ़ाया है।
गांव के युवकों ने मिलकर उनके पुत्र श्रीकृष्ण गुप्ता को राजी कर लिया।
पिता घर में तैयारी कर रहा था, तब पुत्र की भावरें पड़ रही थी।
बुढ़ा मन महसूस कर रह गया।
दो गणेश शंकर विद्यार्थी पाक कानपुर में औरैया और इटावा से आए दो बराते, इसलिए बैरंग लौटी कि धन के अभाव में पिता ने 12 और 14 वर्ष की लड़कियों का विवाह 50 और 52 वर्ष के बूढ़ों से तैयार किया था। मोहल्ले वालों ने विरोध किया, उसी समय दो युवक आगे आए, उनकी वैदिक रीति से कन्याओं की शादी कर दी गई।
3: हाथरस में 12 वर्ष की एक कन्या सुरजो का विवाह एक अधेड़ बूढ़े के साथ तय हुआ।
12 आए तो मोहल्ले वालों ने झगड़ा कर दिया।
लड़की ने मोहल्ले वालों का साथ दिया, फलस्वरूप पुलिस ने बूढ़े वर और उसके दुष्ट बारातियों को वापस लौटा दिया। 4: दुमका बिहार के एक मध्यम परिवार की कन्या ने शराबी वर से विवाह करने से इनकार कर दिया। लड़का विवाह मंडप पर आया, उस समय उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, पांव लड़खड़ा रहे थे।
लड़की ने कहा, जो विवाह मंडप में भी शराब पीकर आ सकता है, वह कब क्या नहीं कर सकता। यह कहकर उसने विवाह रद्द कर दिया।
बारात बैरंग लौटी।
5: प्रांगण में एक बूढ़ा दूसरे विवाह की तैयारी कर रहा था। 3 बच्चे पहले से ही हैं, बच्चों को पता चला तो उन्होंने सत्याग्रह कर दिया, खाना खाने से इनकार कर दिया।
लाचार होकर बूढ़े को अपनी हविश छोड़नी पड़ी। 6: लेडी हॉर्डिंग्स कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल डॉक्टर जीरोजी के
कैंपवेल का बयान है कि हिंदुओं में बाल विवाह का ही फल है कि अधिकांश बच्चे ऑपरेशन होकर निकाले जाते हैं। बाल विधवाओं की संख्या भी भारत में ही सर्वाधिक है। 7: डॉक्टर शून्यई
एस
डगलस का कथन है, मैंने एक 12 वर्षीय लड़की को गर्भावस्था में देखा जो प्रसव के समय पागल हो गई, यह सब उसके अभिभावकों के कारण हुआ जो बाल विवाह को परंपरा मानते हैं।
8: गांव के पास का लड़का स्वस्थ पढ़ा लिख केवल इसलिए रद्दी कर दिया गया कि उसकी कुंडली नहीं मिलती थी, फलस्वरूप जनूथ के सरपंच पम0 श्रीराम गोपाल ने कुंडली मिलाए लड़के से 100 मील की दूरी पर शादी धेनुगढ़ी में की। विवाह होकर बारात लौट रही थी, रास्ते में लू लग जाने से घर पहुंचते पहुंचते लड़के की मृत्यु हो गई। घर वाले अब कुंडली को कोसते हैं, कभी कुंडली बनाने वाले पंडितों को। 9: कटक के एक विवाह में पिता को भारी अपमान तब सहना पड़ा जबकि उसके लड़के श्री कृष्णधर मिश्रा ने पिता द्वारा दहेज और नेगठेक वसूल करने के हर प्रयत्न को विफल कर दिया। लड़के के हठ और तर्क के आगे लालची पिता की एक न चली। 84 बिना खर्च विवाहों का प्रचंड आंदोलन चल पड़े। प्रश्न:
एक राष्ट्र में प्रतिवर्ष विवाहों पर कितना खर्च होता है? 2 कैसे कह सकते हैं कि हमारी विवेक बुद्धि का दिवाला निकल गया है? 3 श्वास लेने वाले और किसे कहा जा सकता है? 4 आदर्श विवाह किसे कहते हैं?
5 सत्याग्रही स्वयंसेवक सेना से क्या समझते हो?
6 विवाहोन्माद के प्रतिरोध के लिए नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए? 7 सामूहिक विवाह करने से क्या लाभ है? 8 उपजातियां कैसे बनी? दहेज से बचने के लिए क्या किया जाए?
9 युग निर्माण योजना द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों पर प्रकरण डालिए। कथाएं: 1 कोटा में नामदेव संप्रदाय के लोग प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह करते हैं जिनमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। नामदेव समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति इकट्ठा होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं।
विवाह देखने के लिए बहुत दूर तक से लोग आते हैं। 2 विटसून त्योहार पर बलिन पूर्वी जर्मनी में 364 सामूहिक विवाह गिरजाघरों में संपन्न हुए, ऐसे विवाह ईस्टर और क्रिसमस त्योहारों पर भी संपन्न होते हैं।
त्योहारों पर संपन्न हुए विवाह 100% सफल माने जाते हैं। 3 तराटा उज्जैन के गौर मालवीय ब्राह्मण बलराम गोवर्धन तिवारी ने चितापद इंदौर के श्री केशव पटेल की पौत्री राधा देवी के साथ विवाह किया जिसमें दहेज जाति भोज आदि कुछ नहीं हुआ।
बारात में वर के अतिरिक्त उसके 2 मित्र, 2 भाई, पिताजी, नाई और पंडित कुल 7 व्यक्ति ही सम्मिलित हुए। लड़की मिडिल पास है, लड़का बैंक में सर्विस करता है। चारकोंदा महाराष्ट्र की एक कीर्तन मंडली ने केवल ऐसे ही भजन बनाने और गाने का नियम बनाया है जिसमें विवाह संबंधी कुरीतियों पर प्रकाश पड़ता है और लोगों को आदर्श विवाहों की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह अन्य कुरीतियों के सुधार के भी भजन गाते हैं, पर और किसी तरह के गीत यह लोग नहीं गाते।
5. मुख्तसर। पंजाब की श्रीमती रणधीर कौर और उनके पति ने विवाह में मिला दहेज और भेंट रक्षा कोष में दान कर देने का आदर्श उपस्थित कर लोगों का हृदय जीत लिया। 6. पटियाला के एक युवक की दिल्ली में सगाई की बात चल रही थी। लड़की वाले गरीब थे, उन्होंने दहेज न मांगने की विनती की, पर न तो लड़के के माता पिता माने न संबंधी लोग। लड़के ने समझाया तो उससे भी बिगड़ उठे। तब लड़के ने साहस किया, खुद ही दूल्हा खुद ही बराती बनकर दिल्ली गया और लड़की ब्याह लाया। घर वालों ने मंसूबे धरे के धरे रह गए। 7. सौराठ मधुबनी में 7 दिन में 7,000 विवाह तय हुए।
सौराठ सभा में प्रतिवर्ष लाखों मैथिली ब्राह्मण एक आम के घने बगीचे में इकट्ठा होते हैं और वहीं विवाह वार्ता करके विवाह तय कर लेते हैं। इससे लड़का ढूंढने में जो भाग दौड़ करनी पड़ती है लोग उससे बच जाते हैं, इच्छित वर भी मिल जाते हैं।
8. सुमेरगढ़ के श्री रतनलाल अग्रवाल ने निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व ही लड़के की शादी के निमंत्रण भेजकर सबको आश्चर्य में डाल दिया।
जब लोगों को मालूम हुआ कि मुहूर्त प्रथा इसीलिए तोड़ी गई कि उस दिन बाजे पालकी के दाम बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि अंधाधुंध शादियां होती हैं, तो लोगों ने उनकी बड़ी सराहना की। 9. नाइजीरिया में दहेज लड़की वाले लेते हैं, वह इतनी अधिक होती है कि किसी किसी विवाह के इच्छुक को 5-5 वर्ष की कमाई भेंट करनी पड़ती है।
पिछले दिनों वहाँ बीबियां द्वारा दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और सरकार से दहेज प्रथा रद्द करने की मांग हजारों नागरिकों ने की। उन्होंने इस प्रथा की भारतीयों से तुलना करते हुए उसे अर्थव्यवस्था का घातक ठहराया। 85. आत्ताई उद्यमता का डटकर मुकाबला किया जाए। प्रश्न 1. अपराध की वृद्धि का दुष्परिणाम लिखो। 2. व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक कर्तव्य क्यों आवश्यक हैं। 3. सिद्ध करो अपराध व्यक्ति के लिए स्वयं घातक होते हैं।
4. अपने देश की उन्नति नहीं हो रही है क्यों।
5. मनुष्य को सदाचार से किस तरह प्रशिक्षित किया जाए। 6. सदाचार और समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम बताओ।
7. सिद्ध करो अनीति करने की तरह अनीति सहना भी पाप है। 8. अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। 9. उन्हें कैसे रोका जाना चाहिए।
कथाएं 1. पांडव उन दिनों राजा विराट के यहाँ छदम वेश से रह रहे थे। विराट के साले कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी और वह उनका शील भंग करने पर उतारू हो गया।
द्रौपदी ने अपने सभी पतियों से कहा, पर सब इस बात के लिए डरते रहे कहीं ऐसा न हो कि भेद खुल जाए और फिर 14 वर्ष वन में रहना पड़े।
पर जब भीम ने यह खबर पाई तो वे किसी भी संकट की चिंता किए बिना बोले, मृत्यु का भय हो तो भी दुष्टता सहन नहीं की जानी चाहिए।
यह कहकर एक दिन उन्होंने कीचक का वध कर ही तो डाला।
2. एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी चंचल कुमारी पर औरंगजेब की कुदृष्टि पड़ गई।
उसने चंचल कुमारी के पिता को धमकाया, यदि चंचल कुमारी का विवाह नहीं किया तो कुचल कर रख दिया जाएगा।
जागीदार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, पर वह आत्मरक्षा के लिए चिंतित हो उठे।
यह समाचार मेवाड़ के राणा राज सिंह ने सुना तो अपनी सेना जागीरदार की रक्षा के लिए भेज दी।
अपनी हानि उठाकर भी निर्बल की रक्षा का जो आदर्श उन्होंने रखा, उससे राजपूत शासकों को बड़ी प्रेरणा मिली। 3. गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने धोखे से मरवा डाला और उनकी लाश खुली सड़क पर फिकवादी से उठाने ले जाएं, इसलिए वहां पहरा बैठा दिया गया। यह खबर गुरु गोविंद सिंह ने सुनी तो उन्होंने लाश को किसी भी कीमत पर वापस लाने का निश्चय किया। उनकी सेना के 2 सिपाही तैयार हुए, एक था बूढ़ा सूबेदार, दूसरा उसका पुत्र। दोनों एक गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे। लाश के पास पहुंचे तो पिता ने कटारी निकाली और इससे पहले कि पुत्र रोके खुद को मार ली और कहा, लाश न देखकर सैनिक पीछा करेंगे, तुम मुझे गुरु की लाश के स्थान पर लिटा दो और उनका शव ले जाओ। पुत्र ने ऐसा ही किया। 4. हंस और हंसिनी उड़ते जा रहे थे, तभी उन्हें नीचे ठंड से सिकुड़ता हुआ एक सर्प दिखाई दिया।
हंस को दया आ गई, उसने उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस पर मादा ने समझाया, अत्याचारी की रक्षा और सहयोग पाप है, तुम पाप को पोषण मत दो,
क्या पता वह तुम्हारा ही अंत कर दे।
हंस ने एक न सुनी, वह नीचे उतरा और सर्प को अपने पंखों से ढक लिया। हवा रुक जाने से सर्प के शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई, उसने रेंगना शुरू कर दिया, पर चारों तरफ पंख देखते ही उसे गुस्सा आ गया और उसने जीवन रक्षक हंस को ही डस लिया। हंस तड़प तड़प कर वहीं मर गया, पर अपने पीछे लोगों को चेतावनी देता गया, दुष्टों पर दया करना भी पाप है।
5. बिच्छू बोला, तुम मुझे पार पहुंचा दो, डंक नहीं मारूंगा।
कछुए ने कहा, अच्छा, और बिच्छू को पीठ पर बैठाकर पानी में तैर चला। अभी कुछ ही दूर चला था कि बिच्छू ने डंक मार दिया। कछुए ने पूछा, यह क्या किया।
बिच्छू बोला, यह तो मेरा स्वभाव है।
कछुए ने कहा, अच्छा हुआ मैंने अपने को सुरक्षित किया हुआ है, पर तेरे आत्ताईपन का दंत तो मिलना ही चाहिए। यह कहकर उसने डुबकी मार ली और बिच्छू पानी में डूब कर मर गया।
6. दो मित्रों ने ईख की खेती की। एक दिन बंटवारे की बात आई तो अंगोला ईख जिसमें कम रस पड़ता है भोले आदमी के हिस्से पड़ी।
उसकी स्त्री ने समझाया, देखो तुम्हारी जैसी सिधाई से ही दूसरे लोग बुराई करने का साहस करते हैं।
उस भोले आदमी ने स्त्री की सीख न मानी। दूसरे वर्ष गेहूं की खेती हुई। चालाक मित्र ने उसमें भी गेहूं तो खुद ले लिया और भूसा उन भोले मित्र के पल्ले बांध दिया। 7. एक अध्यापक कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपना एक लोहे का बक्सा पड़ोसी को सौंपते हुए कहा, आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा और लौटकर आऊंगा तो ले लूंगा। पड़ोसी की नीयत खराब हो गई। लौटकर अध्यापक ने अपना सामान मांगा तो पड़ोसी बोल, बक्सा चूहे खा गए। अध्यापक बिना कुछ कहे लौट आया। उसी के स्कूल में पड़ोसी का लड़का पढ़ता था।
उस दिन उसने लड़के को अपने घर में बंद कर लिया।
शाम तक लड़का घर न पहुंचा तो पड़ोसी पूछने आया, मास्टर साहब ने बताया लड़के को चील उठा ले गई।
पड़ोसी बोला, चील कहीं लड़के को ले जा सकती है। अध्यापक ने उत्तर दिया, क्या जाने भाई, इस जमाने में तो चूहे लोहे का बक्स खा जाते हैं। पड़ोसी हार मान गया।
उसने बक्सा लौटा दिया मास्टर साहब ने लड़का। 86. धर्मतंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाए। प्रश्न 1. राष्ट्रोद्धार का प्रभावकारी माध्यम क्या हो सकता है, राजनीति या धर्म? कारण सहित बताइए। 2. गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में धर्म को आधार कैसे बनाया?
3. देश की वर्तमान प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 4. क्या राष्ट्र में विचार क्रांति की आवश्यकता है, यदि है तो क्यों? 5. भारत में साधु संन्यासियों की संख्या का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? 6. भारत में धार्मिक कार्यों पर होने वाले व्यय पर प्रकाश डालते हुए उसके सदुपयोग की योजना प्रस्तुत करें।
7. मंदिर मठों की संपत्ति का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है?
8. धर्म के नाम पर पाखंड एवं शोषण से जनता को कैसे मुक्त किया जा सकता है?
9. राजनीति से अधिक महत्व धर्म नीति का क्यों है? 10. धर्म के सच्चे स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रश्न मदनेक और ईश्वर भक्त राजकुमार थे। ताजपोशी के समय पुरोहित ने प्रश्न किया, प्रजा का न्याय किस आधार पर करोगे? मद ने उत्तर दिया, अपनी धर्म पुस्तक कुरान शरीफ के आधार पर। पुरोहित ने पूछा, पर यदि वह बात कुरान में न हो तब अन्य विचारशील लोगों से पूछकर निर्णय दूंगा, पर यदि धर्माचार्य और विचारशील लोग भी पक्षपात करें तब मैं अपने विवेक से ही न्याय करूंगा, मद ने उत्तर दिया। राजपुरोहित ने ताजपोशी करते हुए कहा, राजकुमार तब तुम सच्चे धर्मनिष्ठ हो। 2. परिव्राजक महानंद ने जितनी अधिक साधनाएं की सिद्धियां और लोक श्रद्धा भी उतनी ही मिली, पर शांति शांति न जाने क्यों अब तक न मिल पाई। एक दिन से गांव की ओर चल पड़े। एक स्थान पर रोग से पीड़ित एक वृद्ध कराह रहा था। महानंद ने कमंडल से जल निकालकर उसका घाव धोया, दवाई और मरहम पट्टी की। वृद्ध को आराम मिला, नींद आ गई।
आज की जैसी शांति महानंद को किसी दिन नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि सेवा ही सबसे बड़ी सिद्धि है।
3. बोधिसत्व तालाब के किनारे बैठे पुष्पों की शोभा और उनकी सुगंध का आनंद ले रहे थे। एक लड़की आई और बोली, तुम चोर हो। बोधिसत्व चौंक कर बोले, पुत्री मैंने तो किसी का कुछ नहीं चुराया।
चुराया क्यों नहीं, दुनिया की शांति और आनंद चुरा कर यहाँ बैठे हो। संसार पीड़ाओं में जल रहा है, क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं कि तुम जाकर भटके लोगों को भी ज्ञान का प्रकाश दो? अभी यह वार्ता चल रही थी कि एक व्यक्ति आया और उन फूलों को बुरी तरह उजाड़ कर चला गया।
बोधिसत्व ने कहा, बेटी तुमने मुझे इतना धिक्कारा, पर इस व्यक्ति को कुछ न कहा।
लड़की बोली, महात्मन पाप और आसक्ति में डूबे हुए को धिक्कारना पाप को और बढ़ाना है। यह काम तुम धर्मतंत्र वालों का है कि उन्हें ज्ञान देकर ठीक करो।
बोधिसत्व को अपनी गलती मालूम पड़ी और वे समाज सेवा के लिए चल पड़े। 4. मेरी पत्नी उस समय सो रही थी, एकाएक बच्चा चीखा तो मुझे लगा अब पत्नी जाग पड़ेगी और मेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा, पर पत्नी ने बच्चे को छाती से लगाया, बच्चा चुप हो गया। मैं चुपचाप निकल आया, महात्मन अब संसार की मोह माया में फंसना नहीं चाहता, मुझे भगवान के दर्शन कराने का विधान बताइए। एक विरक्त ने साधु से कहा। साधु बोले, मूर्ख, दो भगवान तो तेरे घर में ही बैठे हैं जिन्हें तू छोड़ आया, जा, जब तक तू उनकी सेवा नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं। विरक्त ने मानव आत्मा में विश्वात्मा के दर्शन को समझा और घर लौट आया। 5. एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक मेले में जा रहे थे। एक स्थान पर बैठे कुछ बाबा माला फेर रहे थे, उन्हें देखकर साधु हंस पड़े। आगे एक तपस्वी शीर्षासन लगाए खड़े थे, उन्हें देखकर साधु फिर हंसे, और आगे एक पंडित जी भागवत कह रहे थे, उनके आगे चेलों की जमात बैठी थी, उन्हें भी देखकर साधु फिर खिलखिलाकर हंसे।
उससे आगे एक कैंप में एक डॉक्टर एक रोगी की परिचर्या में लगे थे, यह देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए।
आश्रम लौटने पर एक शिष्य ने पहले 3 स्थानों पर हंसने और चौथे में रोने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटा आज माला, आसन, प्राणायाम और कथा भागवत को तो धर्म समझकर अधिकांश लोग ढोंग कर रहे हैं। यह देखकर हंसी आ गई जबकि भगवान का काम करने वाला एक ही डॉक्टर दिखा। यह देखकर दुख हुआ कि लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को न जाने कब समझेंगे।
सच्चा धर्म संसार की सेवा और उसे सुधारना है,
जप तप नहीं। 87 साधु ब्राह्मण अपना कर्तव्य और दायित्व समझें। प्रश्न:
एक, भारतवर्ष में धर्मजीवियों की संख्या कितनी है? दो, धर्मजीवियों के कर्तव्य क्या हैं?
3, प्राचीन काल के साधु ब्राह्मणों की आज के साधु ब्राह्मणों से तुलना करो।
4, लोक अनुदान का अधिकार किसे है और क्यों?
5, साधु ब्राह्मणों में फैली बुराइयां बताओ।